रहस्य बाबा ने थोड़े थोड़े में सरल शब्दों में बता दिया, इसलिए आते ही पवित्र बनो आदेश दे दिया। इसको इंग्लिश में कहते थे ऑर्डिनेंस दे दिया, आदेश दे दिया पवित्र बनो, और याद दिला दिया तुम देव कुल की पवित्र आत्माएं हो। ये किसी ने याद नहीं दिलाया था या बताया था किसी ने शास्त्रों में, वेदों में, दर्शनों में। हम किसी की बुराई नहीं करते, पर भक्ति करो, देवों का पूजन करो, उन्हें नमन करो, उनका गायन करो, मंदिर बनाओ, लेकिन तुम ही देव कुल में थे। और कितने जन्म थे? लंबा काल, आधा कल्प। तो क्या होगा हमारे अंदर? क्या होगा? सारे देवताई संस्कार, जिसको एक शब्द में कहते हैं देवत्व, वो सब हमारे अंदर है। इसलिए भगवान की आवाज सुनते ही आप सब भी भाग आए ना। रोकना तो बहुतों ने चाहा, माताओं को तो बहुत रोका, पर रुके? मैं देखता हूं, बहुतों को देखता हूं, माताएं छोटी आयु की, ऐसी भागी कुछ नहीं चाहिए दुनिया का, पवित्र बनना है। कहां तक बांधेंगे? हाँ, कुमारों को भी रोका जाता है, तो ये कुमार हैं तो कुमारों का फेवर ले रहे हैं। कन्याओं को भी रोका जाता है, भाइयों को भी, कहीं कहीं भाई कहेंगे हमें छोड़ ही दिया, कहीं कहीं रोका जाता है। लेकिन क्योंकि देव संस्कार हैं और भगवान से मिलन है, तो उन्हें कोई रोक ही नहीं सका। सिंध में जब बाबा ने शुरू किया, मैं सोचा करता हूं क्या हुआ, तो मुझे याद आती है भागवत की एक बात कि श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियों को उस बांसुरी से आवाज सुनाई दी, आ जाओ, कोई रोक नहीं सका। और देखो वंडरफुल बात लिखी है, इस बात को हम सभी समझ सकते हैं कि 6 मास तक महारास चलती रही, महारास, और गोपियों के घर वालों को पता ही नहीं कि गोपी यहां नहीं है। ईश्वरीय लीला, सब बंधन कटते गए। तो मैं भी सोचा करता था जब मैं यहां आया कि भगवान जब पहली बार धरा पर अवतरित हुए, आए उधर, देखा यहां संसार में कोई भी मुझे पहचानता नहीं है, मैं क्या करूंगा यहां, सोचा होगा ना, तो क्या किया, बांसुरी बजा दी, आह्वान कर दिया, देव कुल की पवित्र आत्माओं आ जाओ, मैं आ गया हूं, और भागदौड़ हो गई, कोई रोक ही नहीं पाया। जो छोटे बच्चे रूप में भी देवी देवता कुल की आत्माएं थी वो भी निकल आए। तो ये सुंदर प्रभु खेल चल रहा है, अब सबको पवित्र बनना ही होगा। जो लंबा काल पवित्र रहते हैं, अब ये सब बातें सुन के आप ज्यादा सोचना नहीं, करना है, ये नहीं सोचना हमारी पवित्रता तो कम है ये कैसे होगा, करना है, उसकी विधि बाबा बताते हैं। तो कुछ आत्माओं को समय पवित्र बनाएगा, कुछ आत्माओं को परिस्थितियां पवित्र बनाएंगी, लेकिन वह आत्माएं जो ज्ञान योग के बल से पवित्र बन जाएंगी, अति सुख पाएंगी, परमात्म सुख। मुझे याद आई बाबा की ये बात सुनकर मुरली में, जब 76 की बात थी कि विनाश हो जाएगा, और बहुतों ने ये सोचा हुआ था 76 76 के 76 तक पवित्र रह लेते हैं, क्या दिक्कत है, विनाश नहीं हुआ। तो बाबा से पूछा, उत्तर था बहुत सुंदर, भगवान का उत्तर कि पवित्रता के लिए तुम्हें कोई समय थोड़ा ही बांधना है, पवित्रता तुम्हारे मूल संस्कार हैं उनको जगाना है। वो ये नहीं कि 2 साल तक रहना है, 5 साल तक रहना है, वो तो तुम्हारी मूल निधि है, तुम्हारा खजाना है, उसे तुम्हें जगाना है। तब बहुतों में जागृति आ गई फिर से। तो हम सभी पहली बात याद करें बाबा की, आत्मा की प्योरिटी की पर्सनालिटी, समझ गए ना, पर्सनालिटी का अर्थ व्यक्तित्व, चमक, रूहानियत, तेज चेहरे का। बाबा ने कहा ना, भिन्न भिन्न तरह की पर्सनालिटी होती है, किसी की दैहिक सुंदरता भी उसकी पर्सनालिटी है, किसी का पद पोजीशन उसकी पर्सनालिटी है, किसी की धन संपदा के कारण उसके चेहरे पर रौनक रहती है, पर्सनालिटी है, किसका परिवार बहुत अच्छा होता है, योग्य होता है, उसके चेहरे पर भी रौनक रहती है, वो उसकी पर्सनालिटी है। तो हम अनादि रूप से आत्माएं, जो मैं कह रहा हूं आपको उसकी प्रैक्टिस करेंगे सभी, अपने को देखेंगे परम धाम में बैठी हुई आत्मा, और मेरी चमक अन्य आत्माओं से बहुत ज्यादा है, अपना तेज देखेंगे फैल रहा है। आप परम धाम का, ब्रह्मलोक का चित्र बनाओ बुद्धि में, कल सवेरे करना और अभी कर लेना। परम धाम लाल सुनहरा प्रकाश है, उसमें सबसे ऊपर शिव बाबा चमकते हैं, चमकते हैं ना, और मैं ऐसे उसकी तुलना करूंगा जैसे आकाश में सूरज चमकता है, उसका प्रकाश सारे संसार में फैलता है ना, ऐसे ही परम धाम में ज्ञान सूर्य चमकते हैं, उनका तेज दूर दूर तक फैलता है, उसके साथ मैं आत्मा, मेरा तेज भी दूर दूर तक फैला हुआ है। आत्मा के चारों ओर भी प्रकाश रहता है, किरणें फैलती हैं। इसको शास्त्रों में कारण शरीर कहा गया। तीन शरीर गिनाए हैं, कारण शरीर, फरिश्ता सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। आत्मा के चारों ओर आभा मंडल, हम सब के चारों ओर है वो। वो हमारी पर्सनालिटी है, वो हमारा व्यक्तित्व है। यहां भी जब आत्मा का अभ्यास करो, सभी ऐसे ही करना, मैं आत्मा भ्रकुटि की कुटिया में, यमस्तक सिंहासन पर, और मेरा तेज, मुझसे निकली हुई रंग बिरंगी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। एक चित्र बना लेना कि आप अंधेरे में हैं इधर, और उधर लोग आपको देख रहे हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है? चमक रही है मणि, तेज फैल रहा है। ऐसा अपनी बुद्धि में चित्र बनाना। क्लियर है? यह हमारी आत्मा की पर्सनालिटी। और आत्मा ही शरीर का संचालन करती है। शरीर को चलाने वाली कौन? आत्मा और उसके वाइब्रेशंस। आत्मा में मन है, संस्कार है, प्योरिटी है, शांति है, शक्तियां हैं, ये सब मिलकर उसके जो वाइब्रेशंस बनते हैं, उससे शरीर चलता है और बनता है। मैं एक गुह्य सी बात आपको कह देता हूं, किसी के काम आ जाएगी। विदेशी लोग मेरे से एक प्रश्न किया करते थे, वो प्रश्न अति गुह्य है। फोन बंद कर लो भाई, जिसकी बांसुरी बज रही है, तो बांसुरी की बात आई तो इनकी बांसुरी बजी। तो पूछा करते थे इंग्लिश में, हु डिजाइन द ब्रेन, यानी जो ब्रेन है इसको कौन डिजाइन करता है, इस शरीर को कौन डिजाइन करता है, कौन आकार देता है, इसके दांत कैसे, कान कैसे, नाक कैसी, आंखें कैसी, मस्तक कैसा, भौहें कैसी, सब अलग अलग है ना, हर आत्मा का अलग अलग। तो मैं अपने ढंग से उत्तर देता था। इस बार मुझे एक बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर मिले, बीके हैं वो। मैंने उनसे पूछा, अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर का निर्माण कौन करता है, केवल माँ बाप नहीं, उसने भी उत्तर दिया, आयुर्वेद में इसका वर्णन है, आत्मा ही शरीर का निर्माण करती है गर्भ में। तो मुझे बड़ी संतुष्टि हुई कि मैं जो कहता था, मैं तो ऐसे ही कहता था जो बाबा ने बताया, और जो थोड़े बहुत अनुभव होते हैं, जो ज्ञान मिला है। तो आत्मा के वाइब्रेशन से शरीर को बनाते हैं गर्भ में, और पूरा जीवन आत्मा ही देह का संचालन करती है। आत्मा सुखी, देह की चमक अलग। सबने देखा है, आपके घर में फंक्शन हो रहा हो, शादी हो रही हो, सबके चेहरे कैसे होते हैं, कौन चमकाता है? अंदर की खुशी है ना, बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा हो, अंदर की खुशी चेहरों को चमका देती है। पहले थोड़ा ही थे ये साधन जो आजकल है, क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक, ये सब कहां थे पहले? चेहरों की चमक ही अलग थी, जिसको बाबा कहते हैं सतयुग में तुम देवताओं की नेचुरल ब्यूटी थी, कुछ लगाना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि आत्मा ही अति प्रसन्न थी, आनंदित थी, बहुत पवित्र थी। तो अपने आत्मिक स्वरूप का सभी ऐसे अभ्यास करना, आज सोते हुए भी कर लेना और कल उठते ही। ये नहीं कि बाबा के रूम में बैठ के करना है, आंख खुली, अभ्यास प्रारंभ। अच्छे अनुभव जिसको करने हैं जीवन में, वो ये प्रैक्टिस करेंगे। कई लोग क्या सोचते हैं, आंख खुली तैयार हो जाओ, नहा धो लो, चाय पी लो, फिर योग करेंगे। अब आधा घंटा इसमें लगा दिया, आधे घंटे में कितने संकल्प चल गए, चलेंगे या नहीं चलेंगे? बहुत चल गए। इसलिए योग का सुख नहीं मिलता आंख खुलते ही। पहले बाबा गुड मॉर्निंग, फिर दूसरा अभ्यास कर लेना, मैं आत्मा परम धाम से इस देह में अवतरित हुई, फिर आत्मा बन जाओगे। अगर आप पहले एक मिनट के संकल्पों को कंट्रोल कर दें तो बहुत मजा आएगा जिंदगी में। इन माताओं को जगह बना के दो, बैठा दो इधर, लेट आने वाले आ गया हो, लास्ट सो फास्ट। तो सवेरे के ध्यान देंगे सभी, उन्हें बैठने दो, मेरी तरफ देखो। सवेरे के पहले मिनट के संकल्पों को ठीक कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले मिनट में अगर संकल्प बिखर गए तो फिर वो बिखर जाएंगे, फिर उनको कंट्रोल करने के लिए मुश्किलात होगी। पहला मिनट पसंद है आत्मा का चिंतन, और इसका तरीका यही है कि हम स्वयं को बहुत अच्छे संकल्प दें। आप कुछ भी नहीं जानते, एक चीज तो सब जानते हैं, मैं बहुत सुनाता हूं क्लास में, जब से सुनी है मुरली में, सवेरे उठकर स्वमानों की माला सिमरण करो, यहां करना कल से ही, सोने समय भी करना, क्योंकि जो संकल्प हम सोते समय करेंगे उठते ही वो स्वतः ही आने लगेंगे। बहुत सुंदर चीज है ये। आजकल युग बदल गया है, मोबाइल युग आ गया है, तो बहुत लोग सोते सोते भी मोबाइल देखते रहते हैं क्या क्या आ रहा है, तो उठते ही खेल बिगड़ गया। मोबाइल नहीं था तो कुछ और कल्चर थी, वो सुंदर कल्चर थी। ये भी सुंदर है, फायदे बहुत हो गए, लेकिन अगर इसका मिसयूज किया जाता है तो ये श्राप है जीवन के लिए। तो सभी स्वमानों की माला सिमरण करेंगे और सवेरे उठकर, दूसरी हमारी पर्सनालिटी है, दूसरी कौन सी जानते हैं आप सभी, आपकी तो है, बोलो मुरली से, देवताओं की, आदि स्वरूप। बाबा ने तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया, देवताओं के चित्र देखो, पत्थर की मूर्तियों में भी रौनक, बनाने वालों ने भी रौनक भर दी। हम जाते हैं कहीं कहीं देवियों के मंदिरों में ले जाते हैं लोग, कहीं कहीं तो इतनी भव्य मूर्ति कि देखते ही रह जाओ कि ये आर्टिस्ट को, इन चित्रकारों को कैसे पता है कि ये इतने दिव्य आत्माएं थी। सुंदरता ही नहीं केवल, दिव्यता, प्योरिटी का तेज। तो हमारी दूसरी पर्सनालिटी हो गई देव स्वरूप की। और क्या कहा, जितना विधि पूर्वक पूजन और गायन, तुम सबका होता है, किसी धर्मात्मा का या औरों का नहीं होता, पवित्रता के कारण, कि ब्राह्मणों के अलावा कोई छू भी नहीं सकता मूर्ति को, पवित्रता की पर्सनालिटी। तो अपनी प्योरिटी को बढ़ाने के लिए सभी ये अभ्यास किया करें, रोज कम से कम दो बार, मैं बहुत ज्यादा संख्या नहीं देता हूं, करना वही चाहिए जो प्रैक्टिकल हो सके, देना भी वही चाहिए, दो बार कम से कम। अपने को सभी टाइम देंगे, अपना अच्छा चिंतन करेंगे, अपने स्वरूपों को देखेंगे, हम पवित्र देवता थे, अपना देव स्वरूप सामने ले आओ, अभी लाओ देव स्वरूप सामने, सजे सजाए, सिर पर प्रकाश का ताज, प्योरिटी की चमक चेहरों पर, ये मेरा स्वरूप है। ऐसे थे हम 2500 साल, वो सब हमारे अंदर ही है, दब गया है केवल, तो उसको सामने लाएंगे वही बन जाएंगे। जो हम अपने को मानेंगे वही बन जाएंगे, कोई माने हम थोड़ा ही देवता थे, तो नहीं बनेंगे। माने हम देवता थे और ऐसे थे, पवित्रता का ताज देखो सिर पर, चारों ओर भी आभा मंडल रहता है देवताओं के, पवित्रता का ये मैं हूं। तीसरी पर्सनालिटी इष्ट देव देवियों की, देवता अलग शक्तियां अलग, उसको भी याद किया करें। वो भी तो प्योरिटी के कारण ही है ना। पूजा किस आधार पे होती है? दो बातें हैं, एक पवित्रता, दूसरा भगवान के कार्यों में मददगार जो बने हैं, बाबा की मुरलियों से ही तो है। पूजा उनकी होती है जो पवित्र बने और जिन्होंने भगवान के कार्यों को सफल किया। हनुमान का क्यों गायन है? रामायण में बहुत गायन है ना, सारे राम के कार्य संवारे। राम और लक्ष्मण नागफांस में फांस दिए गए मेघनाथ ने, वो बिना किसी से पूछे गरुड़ के पास पहुंच गए कि आप ही बचा सकते हो, जल्दी चलो, और ले आए। किसी को पता नहीं था क्या करें अब, संजीवनी बूटी हो या और बहुत सारी चीजें, राम के कार्यों को सफल किया। हम भी भगवान के कार्यों को सफल करते हैं और हनुमान की भी पवित्रता प्रसिद्ध है, तो इसलिए पूजन होता है। तो हमारी ये तीसरी भी प्योरिटी की पर्सनालिटी है। चौथा कहा ब्राह्मण, तुम इतने पवित्र बने, इतने महान कार्य किए कि दो युग ब्राह्मणों का ही महत्व हो गया। तो अपने इस महत्व को सभी समझेंगे और बहुत ध्यान देंगे बाबा की एक बात पर। कल तो था सत्यता और स्वच्छता, प्योरिटी, परसों प्योरिटी की ये परिभाषा दी, लेकिन इसको सरल कर दिया कि अगर व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं तो ये भी अपवित्रता है, चाहे वो ईर्ष्या के कारण चलते हों, चाहे परचिंतन के कारण चलते हों, चाहे तेरे मेरे के कारण चलते हों, चाहे दूसरों को आगे बढ़ता देखकर परेशानी होती हो तब चलते हो, बहुत कारण है ना व्यर्थ संकल्पों के। तो क्या होता है, बहुत ध्यान देने की बात है कि कोई व्यक्ति प्योरिटी भी बहुत अच्छी अपना ले, कोई व्यक्ति त्याग भी बहुत अच्छा कर ले। मैं उदाहरण दे रहा हूं, नाम नहीं, बिना नाम के, कई लोग बहुत बड़ा त्याग करके आ गए बाबा के पास, लेकिन त्याग के बाद तपस्वी नहीं बने, इधर उधर देखने में लग गए, कर्मेंद्रियों के रसों में लग गए, प्योरिटी के कारण बहुत बड़ा त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद चेहरे पर प्योरिटी की चमक नहीं आई। क्यों? तपस्या नहीं की, व्यर्थ ज्यादा बढ़ गया। अगर कोई तपस्या न करे तो उसका व्यर्थ तो बढ़ेगा ही, बढ़ेगा नहीं। आए थे क्या करने, करने क्या लगे, ध्यान देना इस बात पर। बाबा के पास हम क्या करने आए हैं, अच्छी तरह इस बात का चिंतन कर लेना। आप माताओं में भी, मैं माताओं की बात कर रहा हूं पहले, आप माताओं में भी पवित्र बनने के लिए कईयों ने काफी संघर्ष पार किया होगा, किया या नहीं? अब एक संघर्ष के बाद जो सुंदर जीवन मिला है उसको और सुंदर बना दो तपस्या के द्वारा। त्याग के बाद यदि तपस्या नहीं होती तो त्याग का तेज भी जीवन में दिखाई नहीं देता, फिर वो त्याग सूखा लगता है। कह रहे एक बहुत अच्छी कार थी हमारे घर में, तो सोने के कितने अच्छे साधन थे, हम तो अलग कमरे में सोते थे, हमारे पास तो खाने पीने का कितना मजा था, अब यहाँ आ गए 10 के बीच में सोना पड़ रहा है, कोई खरांटे ले रहा है, समझ गए ना आगे। तो त्याग सूखापन ले आया, और अगर त्याग के बाद तपस्या हो जाए तो चाहे सूखी रोटी खा रहे हो आनंद ही आनंद, वो त्याग त्याग लगेगा नहीं। त्याग क्या लगेगा, याद करो बाबा की बातें, बहुत बड़ा भाग्य, बहुत बड़ा भाग्य। जब हम यहां आए तो यज्ञ बहुत साधारण था, 68-69 जब तक ओम शांति भवन बना यज्ञ साधारण ही था, ओम शांति भवन बना तो फिर रौनक शुरू हुई ज्यादा, तो साधारण था, पार्टियां आती थी, दादी कह देती थी सभी भाई लोग अपने कमरे खाली कर दो, कहीं भी सो जाओ, बाबा के बच्चे आ रहे हैं। हमें खुशी होती थी कि हम एक कमरे में 5 लोग रहते हैं, 10 को मिलेगा वो एक कमरा, जमीन पर सुलाएंगे ना, हमारे कारण 10 लोग भगवान से मिलेंगे, हमें ये खुशी थी, हम कहीं भी सो रहे हैं, बरांडों में चारपाई डाली है, किसी ने कहीं डाली है, सो रहे हैं, तो एक भावना रहती थी कि हमारे छोटे से त्याग से, कोई भी दादी को नहीं कहता था हम नहीं खाली करेंगे कमरे, दादी ने कहा सब बाहर, खुशी कि हमारे कारण इतने लोग भगवान से मिलेंगे, उन्हें सुख मिलेगा, उनकी जन्म जन्म की प्यास बुझेगी, तो आनंद आता था। और फिर हमारे हम बाहर वो अंदर, ऐसा हो जाता था ना, हमारा सामान भी यूज कर रहे हैं हमें होता था बहुत अच्छा, देते भी तो यही हैं, हम कहां से कमा के लाए, कर लो भाई, सोच है ना, सोच बदल दो संसार बदल जाएगा। और कोई सोचे क्या आ गए यहाँ, सोने की भी जगह नहीं है, बार बार दादी कहती है कमरे खाली करो, इससे तो घर ही अच्छे थे, तो बाहर भी सोएंगे और दुखी भी रहेंगे, इसलिए सुखी रहना अपने हाथ में, सुखी रहना, खुश रहना, आनंद में रहना, ये सब बातें अगर किसी ने दूसरों के हाथ में डाल दी तो ऐसा मनुष्य कभी खुश नहीं रह सकता। हमारी खुशी हमारे अंदर से उपजे, हर चीज में हर परिस्थिति में हम सुखी रहने का मार्ग ढूंढ लें, तो ध्यान देंगे पवित्रता की शक्ति तब ही बढ़ेगी जब व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होंगे। अब व्यर्थ का तो संसार है, एक एक का व्यर्थ अगर रोज गिनती कर लिया जाए बहुत है, और अगर उसको समाप्त कर दिया जाए तो आत्मा में रौनक आ जाती है, आपके चेहरे से ही आपके परिवार वालों की सेवा होगी। इसलिए सभी माताएं विशेष रूप से अपने घर घर को मंदिर बनाएंगे, और अपने को क्या बनाएंगे, इष्ट देवी, भाई लोग क्या बनाएंगे, इस देव बनकर महान आत्माएं बनकर अपने अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाएंगे, ये हमारे हाथ में है। देखो आप इतिहास में पहले जाओ, किसी एक शहर में एक महान व्यक्ति है, उसके नाम से उस शहर का भी नाम है, होता था या नहीं, भक्ति काल में भारत का जो भक्ति काल दिखाया, 3-4-5 कवि हुए, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, मुसलमानों के वही कवि थे रहीम साहब, वो हिंदी हिंदू वो थे मुस्लिम पर थे श्री कृष्ण के भगत, थोड़े थोड़े लोगों ने भारत में भक्ति की एक गंगा बहा दी, गिनती के लोग तो थे वो, और हम सभी कभी ये न सोचें मैं तो परिवार में अकेली चलती हूं, बाकी तो ऐसे हैं वैसे हैं, अकेले। बोलो क्या उत्तर देंगे? अकेली इष्ट देवी की मूर्ति मंदिर में, या 10-20 कितने आते हैं भक्त, वाइब्रेशंस कितने अच्छे हो जाते हैं। आप अगर इस स्वमान का अभ्यास कर लो, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं, और सचमुच इस देवी बन जाओ तो हो ही नहीं सकता आपके घर के सभी लोग इधर ना आ जाएं। कोई नॉनवेज खाए, कोई ड्रिंक करे, हो ही नहीं सकता। जैसे मंदिर में नहीं कर सकते ना, आपका घर भी मंदिर बन जाएगा, भाई लोग भी। हमारे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, ये बात सभी को याद रखनी है। जैसी हमारी स्मृति होगी वैसे ही वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। आप सोचो कैसे फैलाएं? आपको केवल श्रेष्ठ स्मृति में रहना है, वाइब्रेशंस आप पे ही घर में भर जाएंगे। इसलिए मैं माताओं को बहुत सिखाया, बहुत माताएं करने लगी हैं, भोजन बनाते, दो काम करने हैं। भाई लोगों में कौन कौन बनाते हैं भोजन? अच्छा, बहुत है तो ठीक है, आप सब भी करेंगे। एक तो भोजन बनाने को एंजॉय करना, अपनी मेंटेलिटी को चेंज कर देना। ये नहीं ऑफिस से 6 बजे आए, थक गए, अब भोजन बनाना पड़ेगा, छोड़ देते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं। ये नहीं, भोजन अपने लिए ही नहीं बनाएंगे, क्या संकल्प करेंगे? भगवान भी भूखा रह जाएगा, उसे तो खिलाना है ना। बाबा ने एक दिन हंसी में एक मैसेज दिया था शांति वन में, तुम सब मुझे खिलाते हो फिर भी मैं मोटा नहीं होता। बहुत हंसे सब। बाबा भी कभी कभी मजाक सी कर लेते हैं ना अपने बच्चों से। तो भोजन बनाने का आनंद लेना है। पसंद है कुमार जो बैठे हैं? भोजन बनाने को एंजॉय करो, थकान मिट जाएगी आपकी। अच्छे गीत बजा लो, बाबा का आह्वान कर लो, आ जाओ आप भी साथ में मदद करो, फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये याद करते हुए भोजन बनाएंगे, बहुत बहुत सुंदर अनुभव होंगे। क्योंकि भोजन भोग, हमारा भोग भगवान को तभी स्वीकार्य है जब वो संपूर्ण पवित्र हो, केवल शाकाहारी नहीं, जब उसमें पवित्र वाइब्रेशंस भरें। बाबा ने तो कह दिया मुरली में, हालांकि हम तो भोग लगाते ही हैं, रोज भी लगता है, लेकिन बाबा ने रहस्य बता दिया था, तुम्हारा भोग मैं तब स्वीकार करूंगा जब तुम संपूर्ण पावन बन जाओगे, लेकिन जब तक बने तब तक हम भोजन में पवित्र वाइब्रेशंस भरेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये बहुत याद करते हुए भोजन बनाओ, देखो कितने फायदे होंगे। सोच लो अच्छी तरह, आप स्मृति में हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, आपकी पवित्रता बढ़ रही है, इस स्मृति से आपके घर में पवित्र वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, इस स्मृति से आपके हाथों से पवित्र वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। आप भोजन बना रहे हैं, सब्जी को टच करेंगे, काटेंगे, आटा बनाएंगे, उन सब में पवित्र वाइब्रेशंस जा रहे हैं। ये स्मृतियां छोटी चीज नहीं है, और सबसे बड़ी चीज है, ध्यान से सुन लें जो पढ़े लिखे हैं अच्छी तरह से, आपने सोचा मैं आत्मा परम पवित्र हूं, तो पवित्र वाइब्रेशंस पूरे देह में भी फैल गए, ये कर्मेंद्रियों को पावन करेंगे। इसलिए इन स्वमानों से, इन स्मृतियों से बहुत बड़े बड़े लाभ हैं। सहज पुरुषार्थ जिसको करना है, पुरुषार्थ की सारी जटिलताएं और कठिनाइयों को सरल करना है, वो एक ही चीज ले ले, स्मृति स्मृतियों का अभ्यास करना, जो स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई हैं उनको याद करना। कुछ भी ले लें आप, रोज के लिए एक दो तीन ले लें, एक ले लें, ज्यादा ले लें, स्मृतियां दिलाई ना, यही सब स्वमान हमारी स्मृतियां ही तो हैं। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कहां से कौन सी स्मृतियां क्या दिलाई, लेकिन कुछ स्मृतियां हमें अब और पक्की करनी है। उनमें से एक स्मृति जो भूली हुई है ब्राह्मणों को, और बाबा सुनाते रहते हैं लेकिन उस पर किसी का ध्यान जाता नहीं है, जो ब्रह्मा बाबा की बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस थी। बच्चे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब खत्म होगा और मुजात्मा को सब कुछ छोड़कर घर वापिस चलना है। आज बाबा के सब बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत भागे। जो बच्चे मुझे बहुत मदद करते हैं, जब मैं परम धाम जाऊंगा उन्हें भी साथ में परम धाम ले जाऊंगा। सुने आज ये सब, उन्हें भी फिर स्वर्ग में, वो बाद की बात, तो मुक्ति का वरदान मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा भाग्य है भगवान को मदद करना। कर रहे हैं आप सभी, जो सेवा में आए हैं वो भी यही कार्य कर रहे हैं, जो और कार्यों में आए हैं, प्रोग्राम्स में आए हैं, आप सब बाबा के कार्यों को सफल करने में लगे हुए हैं। सबसे अधिक सहयोगी वही आत्माएं हैं जो, बोलो, जो पवित्र हैं और योगी हैं। साकार मुरली के ही बाबा के महावाक्य हैं ये। जो बच्चे रोज 8 घंटा मुझे याद करते हैं वो मेरे सबसे ज्यादा मददगार हैं, क्योंकि उनके द्वारा इस संसार में सुख शांति और शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। सूक्ष्म प्योरिटी, सूक्ष्म सेवा, हमारी योग की स्थिति सूक्ष्म सेवा, इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आप अपने घर में भी अच्छी स्मृतियों का अभ्यास करना। बोलो पसंद है? भाइयों से पूछता हूं, पसंद है? आपकी अनेक बातें ठीक हो जाएंगी। उसी मुरली में यह भी था कि जो पुरुषार्थ की और बहुत सारी मेहनत तुम करते हो वो सब इससे समाप्त हो जाएंगी, सारी धारणाएं स्वतः ही जीवन में आ जाएंगी, विचार जो इधर उधर बहुत भटकते हैं मन के वो सब शांत हो जाएंगे। और मैं अब एक बात पर आपका और ध्यान दिलवाना चाहता हूं, जब तक आप इस पावन भूमि पर हैं, सर्वश्रेष्ठ भूमि है ये, आने वाले दिनों में जल्दी ही ये स्थान जहां हम बैठे हैं किस रूप में प्रख्यात हो जाएगा, महान तीर्थ। लाइट हाउस माइट हाउस तो हो ही जाएगा, पर महान तीर्थ, जहां की मिट्टी को भी मस्तक पर लगाने के लिए लाखों लोग आएंगे। मुझे बाबा के वो शब्द याद रहते हैं, छोटे लाल को याद आ जाएंगे, ये जो पहाड़ियां हैं ये तुम्हारे बेड बन जाएंगे, चांद की चांदनी लाइट बन जाएगी, तुम जो अटैची लाते हो ये तकिए बन जाएंगे। इतनी जय जयकार का समय अब तेजी से आ रहा है, बस समझो पहुंचेगी, पहुंचे आ गया है हमारे देखते देखते, आपके देखते देखते ही। तो हमें बहुत बड़ी सेवा करनी है, तो ऐसे स्थान पर आप आए हैं, इसका फायदा उठा लेना, सुंदर चिंतन करना, अपने जीवन को सुखी कैसे बनाएं, अपनी स्थिति को महान कैसे बनाएं। जब गीत बजाया इसने बहुत सुंदर, सोचो कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, छोटी बात नहीं है। अगर हमें नशा हो जाए कौन हमें साथ दे रहा है। मुझे एक बात याद आ गई है, उसका भी आपको पता नहीं है, सुन लो, कौन हमें साथ दे रहा है। बाबा एक बार बॉम्बे में गए थे, मुंबई नाम तो पीछे पड़ा, तब बॉम्बे था, तो बहुत सारे मछुआरे भी यान में आ गए। मोदी जी ने मछुआरों को बुलाया था 15 अगस्त, आज ही तो है ना, 1800 लोगों को बुलाया था, उनमें मछुआरे भी थे। मछुआरे भी ज्ञान में आ गए, गरीब थे, उन्होंने बाबा से कुछ प्रश्न पूछे। उसमें एक प्रश्न था कि बाबा हम तो मछलियां मारते हैं पकड़ते हैं, हमारा तो बहुत पाप बनता होगा, आप तो पुण्य आत्मा बनाने आए हो, पवित्र बनाने आए हो, हमारे पास तो पैसा भी नहीं, हम तो गरीब हैं। उसका उत्तर तो मैं नहीं दे रहा, पर बाबा ने जो कहा था वो सुन लो। बाबा ने कहा, भगवान को भी कभी कभी नशा चढ़ जाता है ना, लेकिन गरीब बच्चों को देखकर, सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं जिसको चाहूं गरीब बनाऊं, जिसको चाहूं साहूकार बनाऊं, अगले सप्ते मैं गरीबों को साहूकार बना दूंगा, साहूकारों को गरीब बना दूंगा। जिसके हाथ में सब कुछ है वो हमारा साथी है। महाभारत में एक चीज दिखाते हैं, वो बहुतों की समझ में नहीं आएगी। किशोरीकरण जब गीता ज्ञान दे रहे हैं तो गीता ज्ञान को एक दो मिनट का थोड़ा ही था, 4 घंटे तो लगे होंगे। तो लोग पूछते थे कि तब तक सेनाएं क्या कर रही थी, दुर्योधन तो परेशान हो रहा होगा। तो दिखाया है कि श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया था। अभी तर्कों से तो ये बात नहीं समझी जा सकती, पर हमारे साथ वही है जिसके हाथ में सब कुछ है, जो चाहे तो सूरज पूरब की बजाय पश्चिम में उगा दे, उसके हाथ में सब कुछ। चलो इसी नशे से अब योग करेंगे और इसी नशे को साथ लेकर जाना। कौन हमारा साथी है?